प्रकार हुआ, किस प्रकार भगवान ने लीलाएं की। वाल्मीकि रामायण के कई कांड हैं, कई विभाग हैं जिन पर चर्चा हो चुकी है। बाल कांड पर चर्चा हुई, अयोध्या कांड में चर्चा चल रही है कि किस प्रकार भगवान ने जन्म लिया और वो आगे उन्होंने लीलाएं की। तो ऐसे अवसरों पर भगवान की कथाओं को सुनना या भगवान के नामों को लेना, ये शास्त्रों का नियम है। भगवान स्वयं भागवतम में बताते हैं, मान परमान मोदनम, मेरे जो पर्व होते हैं उनका अनुमोदन करना चाहिए। अर्थात ऐसे पर्वों पर, ऐसी तिथियों पर भगवान के नाम को, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। यहाँ पर तो हम लोग भगवान की कथाएं सुनते हैं, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा समय तक सुन सकें। इसीलिए कलयुग के लोगों के लिए शास्त्र भी थोड़े दिए गए हैं, छोटे कर दिए गए हैं। जैसे महाभारत, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर, लेकिन जो देव लोगों में महाभारत है उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी महाभारत है, क्योंकि वहां पर देव लोगों में ज्यादातर काम देवताओं का यही होता है कि वो भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं। हम लोग देवताओं के विषय में केवल यही जानते हैं कि देवता केवल अप्सराओं के साथ संग करते हैं और सुरपान करते हैं, नशा करते हैं, भोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके लिए भोग की सुविधाएं हैं, लेकिन देवता ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नामांकीर्तन, भगवान के गुणगान में लगाते हैं। इसलिए वहां पर बहुत समय तक ये कथाएं चलती हैं और काफी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं। सुखदेव गोस्वामी स्वयं यहाँ पर जो भागवतम कहते हैं उससे कई गुना ज्यादा भागवतम देव लोगों में वो कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान की कथा का महत्व है। आध्यात्मिक जगत में असंख्य लोग हैं जिन्हें वैकुंठ लोग कहते हैं। वो भगवान का शाश्वत जगत है। उस जगत का सर्वोच्च लोक है गोलोक वृंदावन। लेकिन गोलोक में जाने का रास्ता, गेटवे टू गोलोक, ये अयोध्या से होकर जाता है, ऐसा आचार्य समझाते हैं। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित दशरथ, कौशल्या, इन सारे लोग शाश्वत रूप से उस धाम में रहते हैं, अयोध्या धाम में, जो वैकुंठ लोक में है। और वही भगवान यहाँ इस पृथ्वी पर लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, तब अपना धाम भी प्रकट करते हैं और साथ ही साथ पार्षद भी आते हैं। भगवान त्रेता युग में आते हैं, लीला करते हैं। प्राय लीला समान ही होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन ये लीलाएं बड़ी रोचक होती हैं, सुनने के लिए बड़ी लाभदायक होती हैं और हमारे हृदय को शुद्ध करती हैं। अलग अलग स्थानों में, अलग अलग देशों में भगवान राम की लीलाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान सिर्फ भारत में आते हैं या भगवान की कथाएं केवल भारत में ही हैं? तो ऐसा नहीं है। कई देशों में रामायण बड़ी प्रसिद्ध है, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, जमैका, अफ्रीका, इन सब देशों में रामायण बड़ी प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया में तो बहुत अंतर हो जाता है देश के हिसाब से, स्थिति काल के हिसाब से, मगर कथा बड़ी रहती है। जैसे इंडोनेशिया में रावण एक क्रोकोडाइल के रूप में है और वहां पर उसको लकड़ियों से उठाकर लेकर जाया जाता है। चाइना में ड्रैगन के रूप में है रावण। अलग अलग समय में, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग त्रेता युगों में जब भगवान आते हैं तो थोड़ी बहुत लीला बदल जाती है, थोड़ा बहुत जो स्थिति है वो बदल जाती है, लेकिन मूल सिद्धांत, मूल लीला वही रहती है। लेकिन बार बार रामायण सुनने पर भी बड़ा आनंद आता है। ये भगवान की कथा का महत्व है, ये भगवान की कथा का गुण है। अगर हम लोग इस भौतिक जगत की कोई कथा बार बार सुनेंगे तो हमें आनंद नहीं आता, क्योंकि हमें पता है अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें फिल्म देखने का बड़ा शौक होता है, और कई बार वो बड़े गर्व से बतलाते हैं कि मैंने ये फला फला पिक्चर 20 बार देखी या 25 बार देखी, लेकिन बहुत बार देखने के बाद उसका आनंद चला जाता है। ज्यादातर तो केवल एक बार देखने के बाद ही कोई भी भौतिक कथा हो उसका आनंद समाप्त हो जाता है, लेकिन कृष्ण कथा, भगवान श्री राम की कथा कई सालों से, कई वर्षों से हम सब सुनते आए हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण कथा केवल 5000 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हुई, उससे पहले भी लोग कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण का गुणगान करते थे, क्योंकि कृष्ण पहले भी आए थे, भगवान राम भी आए थे। तो इस तरह एक चक्र चलता रहता है, अलग अलग अवतार आते हैं, लोग कृष्ण कथा करते रहते हैं और अपने आप को शुद्ध करते रहते हैं। तो इस तरह से ये कथाएं, तब कथान जो भगवान की कथा है वो अमृत के समान है। तब कथान तप्त जीवन, हमारे तपते हुए जीवन को ये अमृत की वर्षा करती है, और जिसके द्वारा हमारे जो हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इस भौतिक ताप को हम लोग सह रहे हैं, इससे थोड़ी राहत मिलती है। ये कृष्ण कथा का वैशिष्ट है। तो भगवान श्री राम की कथा हम लोगों ने सुनी है कि किस प्रकार वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में बैठे हैं, और आश्रम में बैठे हुए वो विचार कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा पुरुष है जिसमें कोई त्रुटि नहीं, जो कभी कोई गलती नहीं करता, सदैव एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो जब ऐसे विचारों में मग्न है तो उस समय नारद मुनि प्रकट होते हैं, और नारद मुनि से वो ये प्रश्न करते हैं, और नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा नहीं कि इतिहास में ऐसा कोई पुरुष है, लेकिन अभी इसी समय इस पृथ्वी पर एक ऐसा पुरुष राज्य कर रहा है, और वो है भगवान श्री राम। फिर नारद मुनि संक्षेप में वाल्मीकि को रामायण सुनाते हैं, जो कुछ हुआ पहले उसका वर्णन करते हैं, जो हो रहा है उसका वर्णन करते हैं, और जो होने वाला है उसका भी वर्णन करते हैं। उस समय भगवान राम अयोध्या पर राज्य कर रहे थे। तो फिर वाल्मीकि मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं, स्नान के लिए तमसा नदी के किनारे जाते हैं, वहां एक सुंदर स्थान देखकर अपने शिष्य भरद्वाज को कहते हैं कि आप जाकर मेरे लिए नहाने की जो सामग्री है उसको ले आइए, हम यहीं पर स्नान करेंगे। और फिर उस समय जब वो भ्रमण कर रहे होते हैं तो दो क्रौंच पक्षियों को वो देखते हैं जो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय अचानक वो देखते हैं कि एक तीर आकर लगता है और जो क्रौंच पक्षी है नर उसको मार देता है। अचानक वाल्मीकि मुनि के मुख से एक श्राप निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठान वंगद शाश्वती समह यत् क्रौंचं मिथुना देहं अधिकतां मोहितम्। बताते हैं कि हे निषाद, तुमने ये जो कार्य किया है ये बड़ा घृणित कार्य है, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एक को मारा है, यत् क्रौंचं मिथुना देहं अधिकतां मोहितम्, और उन्हें ऐसे समय जब वो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। तो इसलिए आपको कभी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कहकर वाल्मीकि मुनि बड़े दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया था, और वो भी एक छंद के रूप में। तब फिर अपने आश्रम में जब वापस आते हैं तो ब्रह्मा जी आते हैं, उनको समझाते हैं कि ये मेरी इच्छा से हुआ है, और अब रामायण की रचना करो। तब फिर वाल्मीकि मुनि 24,000 श्लोकों वाली इस रामायण की रचना करते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि इसको सभी लोगों को सुनना चाहिए। तब फिर वो अपने ही आश्रम में रह रहे दो बड़े तेजस्वी बालकों को ये रामायण की कथा सुनाते हैं, जिसको वो संतुष्ट कर लेते हैं। और फिर ये दोनों बालक लव और कुश दल गलियों में जाकर, अनेक स्थानों में जाकर, जिसके गलियों के रूप में जाकर, शहरों में जाकर इस कथा को गाने लगते हैं। और फिर गाते गाते अयोध्या में आते हैं। अयोध्या के सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि कथा बड़ी मधुर है, अमृत देने वाली है। और जब वो बालक गाते थे तो ऐसा लगता था कि उसके मुख से अमृत गिर रहा है। जब भगवान श्री राम को यह पता चलता है तो उस समय भगवान उनको अपने दरबार में बुलाते हैं। और फिर वो स्वयं अपने भाई, सभी भाइयों के साथ, सभी जितने भी मित्र थे उनके साथ उस कथा को सुनते हैं। बड़ा आनंद आता है। वो बताते हैं सब काम बंद कर दो, सब भाइयों को बुलाते हैं और फिर बैठ कर राम कथा का आस्वादन स्वयं श्री राम करते हैं। देखिए भगवान की कथा कितनी मधुर है, कितनी रुचिकर है, कि स्वयं भगवान भी इसका आस्वादन करते हैं, उसको सुनकर आनंद लेते हैं। और फिर लव कुश कथा आरंभ करते हैं कि किस प्रकार दशरथ महाराज कई वर्षों तक पुत्र के लिए तड़पते रहे, फिर उन्होंने यज्ञ किया। ऋषि श्रृंग की कथा सुनाते हैं, यज्ञ होता है और फिर उस दिन का वर्णन करते हैं जब भगवान प्रकट हुए। रामनवमी के दिन शुक्ल का दिवस हम लोग रामनवमी मना रहे हैं। शुक्ल के दिवस पर भगवान प्रकट हुए तो भगवान के सार्थक्य का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि रामनवमी थी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, न्यायाचार्य ने बतलाया है इसको, शुक्ल पक्ष अभिजित है पुनीता। तो भगवान प्रकट हुए नवमी तिथि के दिन, शुक्ल पक्ष था, अभिजित मुहूर्त था। और ऐसे अवसर पर भगवान प्रकट हुए, दोपहर का समय था, दिवस मध्य अति शीत न था, न बहुत ठंडा था, न बहुत गर्म था। भगवान राम बड़े दयालु, भगवान राम हमसे ज्यादा तपस्या नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए दोपहर को आ गए थे। लेकिन कृष्ण थोड़े से नष्ट थे, वो चाहते थे कि हम बहुत ज्यादा तपस्या करें, इसलिए रात को 12 बजे आए, ताकि हम लोगों को 12 बजे का उपवास करना पड़े, कुछ खाए पिए नहीं। अगर भगवान राम बड़े दयालु हैं तो उन्होंने केवल 12 बजे का उपवास करना है, तो दोपहर 12 बजे का है। फिर ये कथा हम लोग कल सुनेंगे, भगवान राम के साथ कैसे हुआ शाम के समय। तब फिर भगवान राम बड़े होने लगे। एक समय विश्वामित्र मुनि वहां पर आए। विश्वामित्र मुनि ने इन दोनों बालकों को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा। पहले के दशरथ महाराज देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर वशिष्ठ मुनि के कहने पर उन्होंने उनको दिया। उसके बाद विश्वामित्र मुनि ने लेकर अपने आश्रम में गए, कई राक्षसों का वध हुआ। और फिर उसके बाद राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र मुनि मिथिला की ओर गए, जहाँ पर जनक महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। और उन्होंने एक व्रत रखी थी अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए, ये मिथिला नगरी की ओर गए। वैसे मिथिला नगरी का भी एक बहुत अच्छा इतिहास है। दरअसल ये मिथिला नगरी की स्थापना एक स्वाकु वंश के राजाओं ने ही की थी। बहुत समय पहले एक राजा हुए थे स्वाकु वंश में, जो बड़े धार्मिक राजा थे। और एक समय वो यज्ञ कराना चाहते थे, लेकिन उस समय वशिष्ठ मुनि जो उनके कुलगुरु हैं, उन्होंने कहीं और यज्ञ करने के लिए सहमति दी थी, वो इंद्र का यज्ञ कराने के लिए जाना चाहते थे। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप थोड़ा समय रुकिए, मैं तुरंत इंद्र का यज्ञ कराकर वापस आता हूँ। और फिर गए, जल्दी जल्दी इंद्र का यज्ञ कराया और वापस आए। लेकिन जब तक वापस आए, यहाँ पर राजा ने सोचा कि यज्ञ का समय जा रहा है, तो उन्होंने गौतम ऋषि और अन्य मुनि को बुलाकर यज्ञ करवा दिया। और जब वह यज्ञ हो गया, वशिष्ठ मुनि आ रहे थे तो देखा कि सारे ब्राह्मण गाने का दान लेकर वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि यज्ञ तो समाप्त हो गया। बड़े क्रोध में आकर उन्होंने राजा से कहा कि मैंने आपसे कहा था कि
मैं वापस आकर व्यक्त कराऊंगा, लेकिन फिर भी आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तो इसलिए मैं आपको विश्वास देता हूँ कि आप मेरे देव में खो जाएंगे, ऐसा बात का दिन चला जाए। इस तरह राजा की बड़े क्रोध में आ गए, क्योंकि गलती से वशिष मुनि की थी, अपनी कुल का यज्ञ छोड़कर उनको जाना नहीं चाहिए था। क्योंकि राजा ने भी कहा कि गलती आपकी है, इसलिए मैं भी आपको विश्वास देता हूँ कि आप मेरे देव हो जाएंगे। तो वशिष मुनि का ये राजा का दोनों का दिल चला गया और दोनों अपने सुख की शरीर में रह रहे हैं। तो जो बाकी ऋषि मुनि थे उन्होंने वशिष्ठ मुनि का जो शरीर है, जो घूम रहा था बिना देने के जो घूम रहे थे, उसको एक मटके में रख दिया, जिसमें पहले से ही एक और मुनि का मुनि की आत्मा रह रही थी। लेकिन ये विज्ञान है, ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है। आज हम लोग तस्वीर देवी करना चाहते हैं, विज्ञान आगे बढ़कर ये साबित करना चाहता है कि हमारा विज्ञान इतना बढ़ गया है कि हम अपने बल पर संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। हम टेस्ट में, हम लैब में, प्रयोगशालाओं में संतान उत्पन्न कर सकते हैं। और वो सोच रहे हैं कि ये जो विज्ञान है ये कोई नई नया आविष्कार है, लेकिन कई कई सालों पहले, लाखों साल पहले ये होता था। तो उनकी आत्मा को रखा गया, इसीलिए वशिष्ठ मुनि का और एक नाम है कुंभ मुनि, अर्थात जिनका जन्म कुंभ से हुआ, एक मटके से हुआ है। ये बहुत सबसे इतना विज्ञान बड़ा हुआ। तो कुंभ मुनि उन दोनों को रखा, दूसरे मुनि थे अगस्त मुनि, ये दोनों भाई कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का जन्म उस मटके से हुआ। कुंभ जो राजा थे, उनके देव पुत्र की वशिष्ठ मुनि ने साथ दिया था, उनको किसी ने देव नहीं दिया। आगे चलकर वो राजा देव लोगों में गए और फिर उनकी मुक्ति हुई और भगवान के धाम चले गए। लेकिन जब उनका देह वहाँ छोड़ गए थे, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि राजा नहीं है, इसलिए देह का मंथन किया। वर्णन हम लोग भागवत में भी सुनते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण महाराज की उत्पत्ति के लिए वेण महाराज के शरीर का मंथन किया गया था। फिर उसके शरीर का मंथन किया और उसके जो तरफ हुए उनका नाम था मिथि जनक, क्योंकि मंथन की क्रिया को मिथि कहते हैं, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा मिथि धाम। और मिथि जनक इन्होंने अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं किया इस वासु वंश का, और वे चले गए तो उन्होंने दूसरा राज्य जो मिथिला उसको स्थापित किया, क्योंकि ये मिथि जनक ने स्थापित किया इसलिए और भी का नाम मिथिला हुआ। तो आगे जितने भी आए वो सारे जनक कहलाए, इसीलिए उस राज्य में जो भी राजा होते थे उनको जनक कहते थे। ऐसा नहीं है कि सीता के पिता ही केवल जनक थे, जनक एक पदवी हो गई थी, नाम अलग अलग हुआ होता थे। तो एक धनुष रखा था जिसको उठाना था, सत्यनिष्ठा चढ़ानी थी, उस पर कोई उठा नहीं पा रहा। एक स्थान पर वर्णन है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने प्रयास किया लेकिन उठा नहीं पा रहा। रावण ने प्रयास किया और रावण ने एक बार उठा भी लिया था, लेकिन जैसे ही रावण उठा रहे थे शिवजी ने देखा कि अरे अरे ये धनुष मैंने रावण के लिए नहीं दिया है, ये तो भगवान राम आकर उठाने वाले हैं। तो शिवजी ने उसको भारी कर दिया और फिर वो जो धनुष था वो उसे उठा नहीं। इस तरह से ये धनुष से भी हम लोगों ने कथा सुनी है कि किस प्रकार भगवान विष्णु और शिवजी का युद्ध हुआ था। नारद मुनि की दरबार से हुआ था, ये अलग कथा है। शिव जी और ऋषि का युद्ध होने वाला है, दोनों सामने खड़े हैं, दोनों के लिए विश्वकर्मा ने जैसे धनुष बनाया था। और शिव जी ने जैसे ही विष्णु को देखा, भगवान को देखा, तो अगर कोई भक्त भगवान को देखेगा तो क्या करेगा। सारे देवता खड़े थे युद्ध देखने के लिए, सबकी इच्छा थी कि शिव जी और विष्णु का युद्ध देखना है। नारद मुनि भी खड़े थे, इंद्र खड़े थे, सबकी बड़ी इच्छा हो रही थी अब युद्ध होगा देखेंगे। और शिव जी ने जैसे ही भगवान को देखा दंडवत प्रणाम कर दिया भगवान को और रोने लगे, अश्रु बहने लगे, शिव जी लौटने लगे, भाव विभोर हो गए। और इंद्र यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं, अरे हम तो यहाँ पर युद्ध देखने आए थे। उन्होंने नारद मुनि से कहा कृपया जाइए और शिव जी को समझाइए कि आपको युद्ध करना है, ये भक्ति वगैरह बाहर नहीं कीजिएगा। तब फिर नारद मुनि गए और उन्होंने शिव जी को जरा समझाया और शिव जी से कहा प्रभु आपको युद्ध करना है। तब शिव जी को स्मरण आया कि अरे मुझे अपने प्रभु से युद्ध करना है। तब फिर उन्होंने फिर से युद्ध की आज्ञा मांगी भगवान विष्णु से, कि कृपया मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपसे युद्ध कर सकूँ। और फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है तुम मुझसे युद्ध करो। और फिर ये युद्ध हुआ और बताया जाता है कि पहले भी शिव जी ने मना किया था इंद्र को, इंद्र गए थे शिव जी के पास, उन्होंने कहा कि देखो तुम देखते हो हमेशा मैं क्या करता हूँ। इंद्र ने कहा हाँ जब करते हैं किस नाम से जब करता हूँ, भगवान राम के नाम से जब करते हैं। तब फिर जब तुम जानते हो कि मैं जिसका जब करता हूँ वो व्यक्ति से मैं कैसे शक्तिशाली हो सकता हूँ। तो इस तरह का युद्ध हुआ और अंत में शिव जी हारने लगे, क्योंकि जब भगवान का गणेश भगवान ने उठाया जो विश्वकर्मा ने बनाया था, लेकिन कारण जो भगवान के गणेश हैं वो उसमें समा गए और जो सारे अस्त्र शस्त्र उसमें समा गए और जो सब किसी के पीछे भागने लगे। शिव जी भागे वहां से, इंद्र को कह रहे हैं देखो पहले ही बताया था मैंने, अब कौन बचाएगा मुझे, विष्णु ही बचा सकते हैं। तो सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान से मुस्कुरा रहे थे, प्रेम कर रहे थे, फिर शिव जी को माफ कर दिया और शिव जी बचे। तो फिर शिव जी ने अपना ये गणेश देवराज जनक को दिया, जो हमारे पहले जो जनक थे उसी जनक उनके बाद सातवें राजा हुए थे उनको दिया। और फिर ये परंपरा से चलता हुआ सीता के जो पिता जनक थे उनका संस्कार। तब फिर वहाँ पर विश्वामित्र पहुँचे और बीच में कई कथाएँ हुई, अहिल्या उद्धार हुआ और फिर आगे आकर भगवान ने उस धनुष की प्रत्यंत चढ़ाने का प्रयास किया और धनुष टूट गया। बताया जाता है कि कम से कम 300 से 500 लोग उस धनुष को जो कि पहियों वाली गाड़ी पर रखा था खींच कर लाया करते थे और उस धनुष को बचपन में सीता देवी ने बड़ी आसानी से उठा दिया था। इसी कारण से ये शर्त रखती थी कि जो ये धनुष की प्रतिमा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। तो भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता से विवाह हुआ और फिर परशुराम का रख दिए। परशुराम ने विष्णु धनुष जो उसी समय विष्णु भगवान विष्णु ने बनाया था जिसको युद्ध किया था, उसी धनुष को परशुराम ने वहाँ राम को दिया। राम ने उस धनुष पर भी प्रतिमा चढ़ाई, तीर चलाया और परशुराम के सारे जितनी भी तपस्या का फल था उसको समाप्त कर दिया और फिर परशुराम वापस चले गए। उस तरह अयोध्या में भगवान श्री राम का बड़ा स्वागत हुआ, चारों भाइयों का विवाह हो चुका था, चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ वहाँ पर आए और फिर अयोध्या नगरी को सजाया गया। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ और फिर सब आराम से रहने लगे। तो इस तरह करीब 12 वर्ष चले गए, 12 वर्ष बीत गए। फिर एक समय दशरथ महाराज को ये विचार आया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दरअसल एक समय उन्होंने देखा कि जो खेत के बाल जो है सफेद हो रहे हैं, तो उन्हें मन हुआ कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो पहले से बूढ़े थे लेकिन जब तक व्यक्ति के चिन्हों को देखता नहीं है तब तक अपने को बूढ़ा नहीं मानता है। एक वो कथा है कि जब एक व्यक्ति यमराज के पास गए तो उन्होंने यमराज से कहा कि मैं मेरी मृत्यु से पहले आपने नोटिस क्यों नहीं दिया। तो वकील को नोटिस चाहते हैं, इसी कार्य से पहले नोटिस चाहिए, बिना नोटिस के अगर आप अरेस्ट भी करें तो वकील आपके ऊपर केस कर देते हैं। तो वकील ने कहा आपने नोटिस दिए बिना मुझे यहाँ पर ले आए हैं, मैं तो आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। तब फिर वकील को मैं बताया कि बहुत नोटिस दिए थे आपने ध्यान नहीं दिया, आपके सांस के पास के बाल पहले सफेद किए थे आपने ध्यान नहीं दिया, आपके दांतों को छोड़ा था आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी आंखों को कमजोर किया था आपने ध्यान नहीं दिया, इतने सब होने पर भी आप ये सोचते रहे कि अभी तो मैं भगवान हूँ। भक्त को वैसे सफेद होना चाहिए क्योंकि भक्त आत्मा के स्तर पर होते हैं और हम लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जिस समय बच्चों को हम व्यक्त करते हैं तो कोई कह नहीं सकता है कि वो जवान है या वृद्ध हो गए हैं। इसलिए भक्तों को भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि भक्त आत्मा को चाहते हैं और आत्मा कभी भूली नहीं होती, आत्मा सदैव शाश्वत रूप से आनंद में रहती है। तो इस तरह से 12 वर्ष बीतने के बाद दशरथ महाराज को लगा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझे राम का राज्य करना चाहिए। तब फिर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और फिर से हुआ कि राम का अभिषेक होगा। तो अपने गुरुगुरु के पास गए वशिष्ठ मुनि के पास कि कौन सा अच्छा दिवस है भगवान श्री राम के अभिषेक का, राज्य अभिषेक करना है। और वशिष्ठ मुनि कहने लगे कल का दिवस बहुत अच्छा है, कल के दिवस पर राज्य अभिषेक होना चाहिए क्योंकि भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल है। भगवान का युद्ध वन में जाने वाले हैं, अयोध्या को त्यागने वाले हैं, लेकिन वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कल का बड़ा शुभ दिवस है, कल भी अभिषेक होना चाहिए। तो फिर उस समय रात ही है और सुबह में भगवान को बुलाया गया। लेकिन ऐसे कई प्रसंग हुए जिनको हम सुन चुके हैं, लेकिन उसने अपने दो वर मांगे कि मुझे राज्य चाहिए भरत के लिए और राम का वनवास चाहिए। तो फिर दशरथ महाराज को विवश होकर ये सब कथा हम लोग सुन चुके हैं, इसलिए बड़े संक्षेप में आपको समझा रहे हैं। तो फिर दशरथ महाराज बड़े दुखी हुए और राम को उन्होंने तो आज्ञा नहीं दी, लेकिन राम ने अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए इस आज्ञा को स्वीकार किया और फिर वो भगवान की ओर जाने के लिए तैयार हुए। उस तरह से भगवान राम ने बदल वस्त्र धारण किए। कैकेयी ने सीता देवी से भी कहा कि तुम्हें भी एक तपस्वी का वेश धारण करना चाहिए, क्योंकि सीता देवी भी जाना चाहती थी साथ में। जब भगवान वापस आए थे सुनकर तो कौशल्या देवी बड़ी प्रसन्न थी। कौशल्या देवी उससे पूछ रही थी कि कौन सा समय निश्चित हुआ है तुम्हारे राज्य अभिषेक के लिए, और यहाँ तो भगवान सुनकर आ रहे थे कि मेरे राज्य अभिषेक नहीं वनवास में जाना है। तो बड़े प्रेम से अपनी माता से कहते हैं, वैसे भगवान श्री राम को कौशल्या से ज्यादा कैकेयी से प्रेम था। उत्तर भारत में एक प्रथा आज भी है कि जो पिता के बड़े भाई होते हैं उनको बड़े पिता या किसी के पत्नी होते हैं उनको बड़ी माँ ऐसे कहा जाता है, और अगर छोटे होते हैं तो छोटी माँ कहते हैं, लेकिन अपनी माँ को माँ कहते हैं। मगर भगवान श्री राम इतना प्रेम करते थे कैकेयी से कि कौशल्या को बड़ी माँ कहते थे, सुमित्रा को छोटी माँ कहते थे और कैकेयी को माँ कहते थे। इतना प्रेम था भगवान श्री राम से। तो भगवान कहने लगे कि मेरा राज्य अभिषेक तो नहीं होगा, लेकिन मेरे पिता ने मुझे वन का विभाग दिया है, वन का मंत्री बना दिया है, अर्थात वन में भेज दिया है। और मेरी भी इच्छा थी, काफी समय से यहाँ शहर में रहकर मैं बहुत खोज गया हूँ, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी वन में जाऊँ, इसलिए मैं वन में जा रहा हूँ। कौशल्या के प्रति बड़ा आघात हुआ, लेकिन फिर ऐसी स्थिति को संभाल कर पिता देवी को भी भगवान ने बड़े उपदेश दिए कि आपको नहीं जाना चाहिए, जंगल में बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, खतरा है। मगर सीता देवी ने कहा कि अगर पति नहीं है तो फिर पति को रहने का क्या लाभ है। तब फिर सीता देवी ने पिता जाने को तैयार हुई, कैसे उन्होंने तपस्वी का रूप धारण करने के लिए कहा, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने मना किया। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुमने वचन केवल राम के लिए लिया है, सीता के लिए नहीं, तो सीता पूरे आभूषणों के साथ वन में जाती है। और हम लोग देखते हैं आगे चलकर कई घटनाओं में ये पता चलता है कि सीता देवी के पास आभूषण थे। इस तरह से लक्ष्मण भी तैयार हुए और भगवान वन की ओर जाने लगे। दशरथ महाराज ने अपने मंत्री सुमंत्र को भेजा कि रथ लेकर जाओ, और मैंने कहा है 14 वर्ष, लेकिन राम को 2-4 दिन मन में घुमाकर वापस ले आना, उससे कहना ये मेरी आज्ञा है, 2-4 दिन घूमकर वापस आ जाओ, वनवास हो गया। इस तरह सुमंत्र रथ पर लेकर भगवान को जा रहे हैं। सारे अयोध्या वासी उनके पीछे, ये बड़ा ही दुखद दृश्य था कि सारे अयोध्या वासी विलाप कर रहे हैं, भगवान जा रहे हैं, तो जितने लोग हो सकते थे उनके पीछे चल रहे हैं। जो वृद्ध थे वो घोड़ों को कोस रहे थे, वो घोड़ों से कह रहे थे कि तुम इतनी अच्छी नस्ल के घोड़े हो और इतने तेज चल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है अपने स्वामी की सेवा कैसे करनी चाहिए, धीरे धीरे चलो, हमसे चला नहीं जा रहा है तुम्हारे साथ। ऐसे कई लोग बातें बना रहे थे, और भगवान श्री राम ने जब ये सब सुना तो वो स्वयं भी रथ से उतर गए और फिर लोगों के साथ चलने लगे। फिर चलते चलते
तमसा नदी के तट पर आए। वहां पर उन लोगों से प्रार्थना की भगवान ने बताया कि देखिए दशरथ महाराज बड़े प्रतापी और धार्मिक राजा हैं और भरत ये मुझसे आगे गुणों में है, मुझसे ज्यादा धर्म को जानता है, मुझसे अच्छे गुण भरत में है। कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। तो उस समय रात्रि का समय हुआ और फिर सब लोग वहां पर सो गए। भगवान श्री राम ने बड़े तड़के सुमंत्र को उठाया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि अयोध्यावासी और मेरे साथ आगे तक आए, इसलिए बड़े धीरे से चुपचाप इस रथ को निकालो और दूसरी दिशा में, जिस दिशा में हम जाने वाले हैं उस दिशा में नहीं, दूसरी दिशा में रथ को ले जाओ, फिर वापस ले आओ और फिर हम दूसरी दिशा में जाएंगे, ताकि सुबह जब ये अयोध्यावासी सोकर उठे तो इन्हें पता नहीं चले कि रथ किस दिशा में गया है और तब तक हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग आज की इस प्रारंभ करेंगे। सुबह का समय हुआ और सुबह के समय जो अयोध्यावासी थे उठे और उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम वहां नहीं है, तो बड़े भयम में विलाप करने लगे कि हमारे जीवन का क्या लाभ है अगर भगवान हमारे साथ नहीं, अगर राम हमारे साथ नहीं, हम क्या मूल्य कर अयोध्या जाएंगे, चलो यहीं पर अपनी चिता बनाते हैं और यहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं, कैसे जाएंगे अयोध्या। जो लोग अयोध्या में रह गए हैं जब वो पूछेंगे कि तुम राम को ले गए थे, राम कहाँ है, कैसे तुम राम के बिना वापस आए, तो हम क्या जवाब देंगे। ऐसे बड़े विलाप करने लगे, अलग अलग बातें लोग कहने लगे। कोई कहने लगा चलो इधर ढूंढते हैं, देखते हैं भगवान कहाँ है, राम यहाँ गए हैं लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए, और फिर बड़े थक हार कर अयोध्या की ओर वापस आए। जब अयोध्या में आए तो वहां की स्त्रियां विलाप करने लगी जो जा नहीं पाई थी, उन्होंने अपने पतियों से पूछा कि कहाँ है श्री राम, और जब उन्हें पता चला कि वे श्री राम तो खो आए हैं तो बड़ा विलाप करने लगी स्त्रियां, कहने लगी कि कैसे हम यहां पर इस कैकई के राज्य में रहेंगे, वो कैकई जिसने राज्य के लिए अपने पति तक के प्राणों को खतरे में डाला, हम जानती हैं कि राम के न आने से दशरथ महाराज अपने प्राणों को रख नहीं पाएंगे और अपने प्राणों को त्याग देंगे, और फिर उनको देखकर कौशल्या देवी भी अपने प्राणों को त्याग देंगी, सुमित्रा देवी प्राणों को त्याग देंगी, फिर हम कैसे रहेंगी, फिर ये केवल कैकई रहेगी और अपने पुत्र के साथ राज्य करेगी, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए, हम कैसे रहेंगे। ऐसे बहुत सारा विलाप उस स्त्रियां करने लगी। इनके विलाप से हम सीखते हैं कि अगर हमारे जीवन में भगवान ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कैसा विलाप कर रही थी, सारा राज्य था, सब कुछ था, लेकिन उसमें वो शोभा नहीं थी, उसमें वो माधुर्य नहीं था, उसमें वो आकर्षण नहीं था जो भगवान श्री राम में है। तो ऐसा आकर्षण, ऐसी आसक्ति हमें भगवान के प्रति जागृत करनी चाहिए। इधर भगवान सुमंत्र के साथ चलने लगे, रथ आगे बढ़ा और फिर भगवान एक स्थान पर पहुंचे जो गंगा नदी का तट था, जिसे श्रृंगेश्वरपुर कहते हैं, और भगवान वहां पर आए। बड़ा सुंदर स्थान था और वहां पर निषादों का राज्य था, निषाद राज्य कर रहे थे, और वहां का जो राजा था वो बहुत बड़ा मित्र था भगवान श्री राम और दशरथ महाराज का। तो फिर निषाद राज ने सुना कि बड़ा कोलाहल हो रहा, लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि जहां से भी भगवान जाते थे सब लोग बातें करते थे। दरअसल भगवान की ये लीला, वन गमन लीला, ये बड़ी प्रसिद्ध लीला है, भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। शास्त्र में बताया गया है आदौ राम तप वनागमनम, पहले भगवान तपस्या करने के लिए वन में गए, हत्वा मृग कांचनम, फिर बाद में उन्होंने मृग कांचनम की हत्या की। तो भगवान की बड़ी सुंदर लीला है, जहां से भगवान जाते हैं लोग अलग अलग बातें बनाते हैं, देखते थे अरे बड़ा सुंदर पुरुष है, कौन है ये, और फिर पता चलता था कि अरे ये तो दशरथ नंदन है, श्री राम है, तो लोग कोसने लगते थे, दुख होता था उन्हें राम को ऐसे वस्त्रों में देखकर और ऐसे जमीन पर चलते हुए। वो कहते थे कि दशरथ महाराज ने अच्छा नहीं किया, एक स्त्री के वश में आकर अपने इस आज्ञाकारी पुत्र को उन्होंने राज्य से निकाल दिया, वन में भेज दिया, कैसा पत्थर का हृदय है दशरथ महाराज का। कभी कभी कोई ज्योतिषी हुआ करते थे गांवों में, तो ज्योतिषी भगवान के चरण चिन्हों को देखा करते थे, तो चरण चिन्हों को देखकर वो ज्योतिषी कहते थे कि अरे ये व्यक्ति इसमें तो राजयोग है, ये तो सम्राट बनने वाला है, इसके भाग्य में तो सम्राट बनना लिखा है, ये जंगल में क्या कर रहा है, ये वन में कैसे जा रहा है। वो जानते नहीं थे ये सम्राट नहीं, सारी सृष्टि के मालिक हैं भगवान श्रीराम। भगवान श्री राम आए हैं दशरथ नंदन, तो अपने सारे मंत्रियों को लेकर उनके स्वागत के लिए वहां पर गया और बहुत सारी सामग्री लेकर गया स्वागत के, और वहां पहुंचते ही जैसे ही श्री राम को देखा उसने दंडवत प्रणाम किया, भगवान श्री राम ने उसको गले से लगा दिया, बड़ी मित्रता का भाव कर रहे थे। तो व्यक्ति अगर भगवान की शरण जाता है, भगवान को समर्पण करता है, तो भगवान उसको अपने हृदय में स्थान देते हैं, अपने हृदय से लगा देते हैं। ये वचन भगवान श्री राम ने दिया है, आगे चर्चा हम लोग इसकी चर्चा करेंगे जब युद्ध कांड में आएंगे। तो भगवान श्री राम ने उनको हृदय से लगाया, लेकिन आप यही कर रहिए। तो उस समय भगवान श्री राम ने बताया कि देखो मुझे वन में रहना है, ये जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुम लाए हो मेरे लिए, ये मेरे खाने योग्य भी नहीं है, मैं इनका स्पर्श भी नहीं करूंगा और ना ही मैं वन छोड़कर किसी गांव में जाऊंगा, मुझे यही रहना है, वन से गुजरना है और किसी भी भोग में नहीं लगना है, एक साधु का जीवन बिताना है, एक साधु को कोई भोग नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति त्यागी का जीवन जीते हैं उन्हें ना ही बहुत अच्छा अच्छा खाने की इच्छा करनी चाहिए, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, भला न खाई दे आर भला न पाई दे, और ना ही बहुत अच्छा खाने की इच्छा करनी चाहिए और ना ही बहुत ही अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने की इच्छा करनी चाहिए। और भगवान अपने आचरण से इसको दिखला रहे हैं। तो भगवान ने उसे त्याग दिया, निषाद राज बड़ा दुखी हो गया। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप हमसे कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, गांव के बाहर ही आपके लिए बहुत सुंदर कुटिया का हम निर्माण कर देते हैं, आप उसमें रहें, कुटिया में रहने में तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप कुटिया में रहिए और आप फल खाना चाहते हैं तो ऐसा करेंगे कि हर रोज एक व्यक्ति गाँव से एक फल आपके लिए लाएगा, हमारे गाँव में 365 लोगों से ज्यादा लोग हैं, इसके साल भर आपको कोई ना कोई फल लाकर देता रहेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए लेकिन यहीं पर रहिए। किसी न किसी तरह से भगवान को वहां रोकना चाह रहा था, अपना मन भगवान में लगाना चाह रहा था, ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये आसक्ति है, और ऐसी आसक्ति हमें कृष्ण से भगवान श्री राम से होनी चाहिए। लेकिन भगवान राम ने इसको अस्वीकार किया, भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे एक वनवासी के समान रहना है, तो मैं वन में जाऊंगा। विशालराज ने प्रार्थना की कि आज अभी ये रात्रि का समय हुआ है, अभी गंगा पार मत कीजिए, आप यही विश्राम कीजिए, कल सुबह जाइएगा। तो फिर उसकी बात को भगवान ने स्वीकार किया और भगवान वहीं विश्राम करने लगे। निषाद राज ने पत्तों की बहुत सुंदर शैया भगवान के लिए बनाई और भगवान श्री राम वहां जमीन पर लेट गए। वो भगवान जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, सब कुछ दिन से खाता अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, वो भगवान वन में क्यों जाते? वो भगवान जमीन पर क्यों लेटते? स्वयं अनंत शेष जिनकी शैया है, लक्ष्मी देवी जिनकी सेवा करती हैं, वो भगवान जमीन पर लेटे हैं, भक्तों की शैया पर लेटे हैं। क्या सिखला रहे हैं भगवान? सिखला रहे हैं एक मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए सिखला रहे हैं कि एक मनुष्य को भोगी नहीं बनना चाहिए, भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए, त्यागी बनना चाहिए, वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा तमेकं पुरुषं पुराणं श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी वैराग्य विद्या चैतन्य महाप्रभु भी यही सिखाने के लिए आए कि कैसे वैराग्य उत्पन्न करना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए वैराग्य को प्रकट कर रहे हैं, मनुष्यों को सिखला रहे हैं कि अगर हमारे पास भोग की सुविधाएं हो तो भी व्यक्ति को अनासक्त रहना चाहिए, त्याग देना चाहिए। हम लोग अपने अपने जीवनों में बड़े आसक्त हैं, हमारे पास छोटी सी सुविधाएं हो जाती हैं, हम सोचते हैं यही जीवन है। लेकिन ये वो भगवान हैं जिनका सारा जगत है, सारी सुविधाएं उनके पास हैं, लेकिन फिर भी भगवान वैराग्य दर्शा रहे हैं, भगवान हमें ये सिखला रहे हैं कि कैसे भोगों से अलग रहकर व्यक्ति सुखी रह सकता है। और बड़े सुख से भगवान वहां पर लेट गए, लक्ष्मण पहरा देने लगे। तो निषाद राज लक्ष्मण के पास जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, बड़ा दुख होता है उनको भगवान को देखकर। वर्णन है रामायण में कि निषाद राज रोने लगते भगवान की इस अवस्था को देखकर कि ये जो श्री राम हैं जिन्होंने बचपन से राज्य के मखमली गद्दों पर विहार किया है, ये वैकुंठ विहारी हैं जो वैकुंठ में वास करते हैं, सारा ऐश्वर्य जिनका है, भगवान के गुरु का जब वर्णन पराशर मुनि करते हैं तो बताते हैं कि सारा ऐश्वर्य भगवान के पास है। और निषाद राज रो रहे हैं, अश्रु बहा रहे हैं कि ये वो भगवान है जो आज तक कभी मखमली गद्दों पर गद्दों से नीचे नहीं उतरे, वो भगवान आज पत्तों की शैया पर सो रहे, जमीन पर सो रहे। बड़ा दुख में हुआ और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम जाकर सो जाओ, तुम भी आराम करो, और ये मत समझना कि मैं श्री राम की रक्षा नहीं करूंगा, मुझे श्री राम अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय है, और मैं तो यहां पर रहता हूं इसलिए यहां की स्थिति को जानता हूं। अगर कोई कष्ट आया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि पहले मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा, फिर राम तक कोई कष्ट जाएगा, और न केवल मैं, ये मेरी सारी सेना है यहां पर जो श्री राम का रक्षण करेंगे, इसलिए तुम सो जाओ। लक्ष्मण उस समय विलाप करते हैं, लक्ष्मण स्मरण कर रहे हैं अयोध्या का, लक्ष्मण को बड़ा दुख हो रहा है। जब वो वापस आ रहे थे तब तो दशरथ महाराज को बड़ा क्रोध में उन्होंने बहुत कुछ कहा था कि हमारे पिता ये दशरथ एक स्त्री से आसक्त हो गया है, इसको त्याग देना चाहिए, इसको बंदी बना लेना चाहिए, और अगर ये आपके मार्ग में आया तो मैं स्वयं इसका वध कर दूंगा। लेकिन अब लक्ष्मण अपने हृदय की बातें निषाद राज को प्रकट करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हे निषाद राज, जो भगवान ऐसे शैया पर सोए हैं, जिन भगवान का ऐश्वर्य मैंने देखा है, आज जब वो इस परम की शैया पर, एक भक्तों की शैया पर सो रहे हैं तो मुझे नींद कैसे आ सकती है। और वो भगवान जिन्होंने बचपन से अपने कोमल कोमल चरणों को केवल राजमहल के स्थानों पर डाला है, आज वो जब इन कठिनी राहों पर चल रहे हैं तो कैसे मैं संतुष्ट हो सकता हूं, कैसे मैं आनंद ले सकता हूं। बताया जाता है कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए, इंद्रियों को वश में किया। रावण के पुत्र का नाम था इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीता था, लेकिन लक्ष्मण इंद्रिय जीत है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, निद्रा को काबू में किया और भगवान राम का रक्षण करते रहे। फिर वो विलाप करते हैं कि अयोध्या नगरी का क्या हुआ होगा, जिस नगरी से राम चले गए उस नगरी में क्या रहा होगा, सारे लोग प्राय मृत होंगे। और मैं जानता हूं कि दशरथ महाराज राम से बड़ा प्रेम करते हैं और उनके जाने के बाद वो अपने प्राणों को नहीं रख पाएंगे। मैं नहीं जानता हूं कि इस समय के बाद जब हम वापस जाएंगे तो हम उनका दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अयोध्या कैसी होगी, कौशल्या देवी होंगी या नहीं होंगी, सुमित्रा देवी होंगी या नहीं होंगी, ये मैं नहीं जानता। भरत राज्य कर रहे होंगे, कैसा राज्य होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दशरथ महाराज अपने प्राणों को नहीं रख पाएंगे। और वो विलाप करते हैं कि हाय, उस समय जब दशरथ महाराज अपने प्राणों को त्याग रहे होंगे, मैं उनके करीब नहीं हूं, मैं उनके करीब नहीं हूं, उनका पुत्र राम उनके पास नहीं होगा। वैसे एक कथा वैसे बताई जाती है इस विषय में कि जटायु ने ये वरदान, ये वचन लिया था दशरथ महाराज से कि वो अपना पुत्र जन्म के पहले कि वो अपना पुत्र उन्हें देंगे, जिस कारण से लंबी कथा है, बहुत विस्तार से नहीं बता रहे हैं, जिस कारण से जब वो अपना पुत्र मांगने आए तो भगवान दशरथ महाराज ने देने से मना कर दिया। जटायु ने कहा कि आपने वचन दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आप वचन को पूरा कीजिए, आपने वचन दिया है कि आप अपने बड़ा पुत्र मुझे देंगे। दरअसल पुत्र होने के पहले ये वचन लिया था, उन्होंने बताया आपके 4 पुत्र होंगे, सबसे बड़ा पुत्र मुझे दे दीजिएगा। दशरथ महाराज ने सोचा 4 होने वाले हैं, उनमें से बड़ा हम दे देंगे, कोई बात नहीं, तो वचन दिया था। और अब जब वचन पूरा करने का समय आया तो किसको मांग रहे हैं, राम। दशरथ महाराज ने कहा मैं नहीं दे सकता। तो भगवान राम छोटे थे, वहां चलकर आए, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन भी कई भक्तों ने बड़े सुंदर किया है। चुमक चलत रामचंद्र बाल पेंजनिया, जब चला करते थे तो उनके पांव की जो पेंजनिया पायल डाला करते थे, बड़ी सुंदर लगता था सुनने के लिए, और बड़े थुमक थुमक कर चलते थे, चुमक चलत रामचंद्र बाल पेंजनिया। जब जाया करते थे तब कौशल्या मात्र जाकर उनको उठा लिया करती थी, धाय मात्र गोद लेकर दशरथ की बनिया। तो इस तरह से भगवान वहां पर आए और भगवान ने जटायु से कहा कि मुझे एक बात बताइए, पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है। जटायु ने कहा पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पिता को सहारना, मृत्यु के समय उसको अग्नि देना। तो फिर उन्होंने कहा कि आज से मैं आपका पुत्र हूं, दशरथ महाराज का वचन है कि वो मुझे आपको देंगे, आज से मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन एक प्रार्थना करता हूं, मुझे अपने पिता के पास, मुझे दशरथ महाराज के पास रहने दीजिए, मैं पुत्र आपका हूं, लेकिन दशरथ महाराज के पास रहने दीजिए, लेकिन जब मेरे कर्तव्य पालन का समय आएगा, जब आपको आपकी मृत्यु होगी, आपको अग्नि देनी होगी, तो मैं वचन देता हूं मैं वहां पर आकर आपका अंतिम संस्कार करूंगा। और क्योंकि दशरथ महाराज आज से मेरे पिता नहीं है, इसलिए उनका अंतिम संस्कार मैं नहीं करूंगा। और हम सब जानते हैं कि जिस समय जटायु ने अपने प्राण त्यागे तो कौन थे उनके पास, उनका अंतिम संस्कार भी भगवान ने किया। और जब दशरथ महाराज ने अपने प्राण त्यागे, लोक कथा है ये, वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है। इस तरह से भगवान राम लक्ष्मण जो हैं वो विलाप करने लगे कि अयोध्या में क्या हुआ होगा, सब लोग अपने प्राण त्याग देंगे और मुझे नहीं पता कि मैं वापस जाकर उन लोगों को देखूंगा या नहीं देखूंगा। वैसे विलाप करते करते सारी रात बीत गई और निषाद राज सारी रात रोते रोते निकाल। जब वो समय बड़ा सुंदर वर्णन है, दरअसल वाल्मीकि रामायण का वर्णन पढ़ते पढ़ते ही आंखों में आंसू आते हैं, जो वर्णन लक्ष्मण करते हैं। और उस समय सारी रात निषाद राज रो रहे थे और सुबह हुई भगवान उठे और उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यह सुमंत्र अब तुम वापस जाओ। सुमंत्र ने कहा कि आपके पिता की आज्ञा है कि मैं आपको वापस लौटा ले जाऊं, इसलिए कृपया करके आप वापस चलिए मेरे साथ। आप बहुत हो गया, आपने वन पे दास कर लिया, आप चलिए। और अगर कैकेयी या भरत कोई विरोध करेंगे तो हमारी सारी सेना उसका विरोध करेगी। उस समय भगवान राम धर्म की व्याख्या सुमंत्र को बताते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। सबसे पहले उनको तात कहकर संबोधित करते हैं, पिता कहकर संबोधित करते हैं। ये नियम कि हमें अपने से बड़ों को, अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनको आदर सम्मान देना चाहिए, और भगवान राम ने दिखलाया। फिर भगवान कहने लगे कि अगर मैं वापस चला गया तो मेरे पिता का वचन खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा और मेरे कुल के नाम पर एक धब्बा लग जाएगा, कलंक लग जाएगा कि मेरी वजह से, राम की वजह से दशरथ महाराज को कलंक लगा और मैं ये नहीं चाहता। धर्म की रक्षा तो हरेक को करनी चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन वो करते हैं, श्री रघुजी हरिचंद नरेश सहे धर्म हित कोटि कलेश। इतिहास से वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े राजा हुए हैं श्री महाराज दधीचि हरिश्चंद्र, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी त्यागना उचित समझा। और मैं तो केवल वन में जा रहा हूं। हम सब जानते हैं श्री महाराज की कथा, किस तरह एक कबूतर को बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर के मांस को काट दिया, सारा मांस दे दिया, फिर भी वो जो तराजू था वो एक ही तरफ था, कबूतर भारी था और अंत में अपने आप को उन्होंने दे दिया। दधीचि जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियों को दे दिया जिससे वज्र बना और फिर पृथ्वीराज का वध हुआ। पर हरिश्चंद्र इतने सत्यवान थे कि अपनी ही पत्नी, एक समय वो उन्होंने अपने आप को बेच दिया था एक ऐसे व्यक्ति के पास जो शमशान का मालिक था, और शमशान में उनकी ही पत्नी आई है, बच्चे के लिए कफन नहीं है, बच्चे की मृत्यु हो गई है, उनका ही बच्चा है, उनका ही पुत्र है, पत्नी आई है, कफन के लिए कपड़ा नहीं है, अपनी साड़ी को आधा फाड़ कर कफन बनाया है और वो प्रार्थना कर रही है कि इसका अंतिम संस्कार करें। लेकिन हरिश्चंद्र कहते हैं कुछ दान देना होगा, यहाँ का नियम है, मेरे मालिक का नियम है, कुछ कपड़ा कुछ अन्न देना होगा। उनकी पत्नी कह रही है कि मेरे पास तो कपड़ा भी नहीं है, जो कपड़ा था उसका भी आधा फाड़ कर इसका कफन बनाया है, केवल आधा कपड़ा मेरे शरीर पर है और ये तो आपका कर्तव्य है। हरिश्चंद्र कहते हैं नहीं, मैं इस समय धर्म से बना हूं, मेरी कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, मैं बिक चुका हूं अपने मालिक के लिए। और फिर उस समय उनकी पत्नी वो आधा कपड़ा भी निकाल कर देने लगती, शरीर पर केवल आधा कपड़ा है, उसको एक दान के रूप में, दान के रूप में देने लगती है। और उस समय भगवान वहां पर अनुग्रह करते हैं हरिश्चंद्र का। और भी कई उदाहरण भगवान देते हैं, रणती के जो बड़ी भूता देव और बलि महाराज, इनका गुणगान करते हैं कि इन्होंने अपने धर्म के लिए क्या क्या नहीं। बलि महाराज ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया, फिर भगवान उनको दान करे तो तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। रोक देखिए भगवान, भगवान कहते तुम अपना वचन पूरा नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर पाव रखी, मैं तो बचा हूं, और भगवान ने पाव नहीं रखा सर पर। तो बलि महाराज का गुणगान, कैसे बड़े बड़े राजा हुए हैं। इस तरह सुमंत्र को उन्होंने समझाया कि धर्म का पालन करना चाहिए, और इस तरह से उनको समझा बुझाकर सुमंत्र को उन्होंने अयोध्या वापस भेज दिया। सुमंत्र जब अयोध्या आए तो बड़ा दुखद दृश्य है, उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। लेकिन अब आगे भगवान चलने लगे। ये भगवान की अब सुंदर लीलाएं यहाँ से प्रारंभ होती हैं। भगवान अब आगे जा रहे हैं, भगवान को गंगा नदी पार करनी है, तो भगवान को नाम चाहिए। वो व्यक्ति जिनके नाम से मनुष्य भवसागर पार कर जाता है, उनको एक छोटी सी नदी गंगा पार करने के लिए नाम चाहिए, भक्तों का सहारा चाहिए। इसीलिए कवि ने लिखा है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवल की नाम चाहिए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है, इसलिए भक्त महत्वपूर्ण है। भक्तों की सहायता के बिना भगवान कोई लीला नहीं करते। तो यहाँ से भगवान नदी पार करने वाले हैं, तो भगवान ने केवट जो नाविक था उसको बुलाया, यहाँ पर खड़े हैं। तो जैसे ही केवट ने देखा कि भगवान उन्हें बुला रहे हैं, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं 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 नहीं, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। भगवान सोचने लगे, अरे इसको क्या हो गया, नदी पार नहीं कराएगा, इसका तो काम है केवट का गंगा देवी गंगा पार कराना। तो भगवान गंगा की ओर बढ़ने लगे, नाव वहां पर थी। वैसे गंगा देवी ये भी बड़ी प्रसिद्ध, बड़ी शुद्ध पावन नदी है। इनका उद्गम हुआ था जब भगवान ने अपना रूप बढ़ाया बलि महाराज के वचन को पूरा करने के लिए, बलि महाराज का सब कुछ लेने के लिए। तो उनके नख से जब इस ब्रह्मांड में छेद हो गया, तो गिरजा का जल यहाँ पर आ गया, जो आगे चलकर गंगा बने, गंगा देवी के रूप में। तो गंगा देवी देख रही थी कि वही नख जिससे मैं प्रकट हुई हूँ, वही नख वही चरण कमल मेरी ओर आ रहे हैं। तो गंगा एकदम हर्षित हो गई, और गंगा हर्षित हो गई तो आप जानते हैं क्या होगा, उथल पुथल हो गई और नाव हिलने लगी, केवट और घबरा गया। वैसे गंगा देवी इनका उद्गम गोलोक में है। गंगा देवी गोलोक में भगवान के साथ एक गोपी है। बहुत सारी गोपियां यहाँ पर नदी के रूप में प्रकट होती है। सरस्वती देवी ये भी एक गोपी है और यहाँ पर सरस्वती नदी के रूप में प्रकट होती है। तुलसी देवी ये भी एक नदी के रूप में प्रकट होती है। कौन सी नदी है तुलसी देवी, कौन सी नदी के रूप में प्रकट होती है? गंडकी नदी, गंडकी नदी में यहाँ पर शालिग्राम शिला मिलते हैं, एक स्थान है, ये तुलसी देवी इस रूप में प्रकट हुई। आप लोगों ने अगर तुलसी की कथा सुनी है तो उसमें ये वर्णन है कि किस प्रकार तुलसी देवी के जो बाल थे वो नदी के रूप में बदल गए थे। तो तुलसी देवी ये भी भगवान के साथ गोलोक में रहती, जो सारे गंगा देवी भी गोलोक में रहती, केवल भगवान की लीलाओं के लिए यहाँ पर आती, उनका उत्तम स्थान। वैसे गंगा देवी अपने आप को बड़ी दुर्भाग्यशाली समझ रही थी पहले, क्योंकि कृष्ण की लीला के समय उन्होंने प्रार्थना की थी कि आप तो यमुना में हमेशा विहार करते हैं, लेकिन गंगा में आप विहार नहीं करते, खेलते नहीं। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए तो गंगा के तट पर, उन्होंने कहा ठीक है पहले यमुना के तट पर कर लिया, अब गंगा में। और बचपन से खेले गंगा में, हमने कई लीलाएं सुनी है चैतन्य महाप्रभु, तो बचपन से खेले। एक समय जब चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ गंगा में स्नान कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, गंगा के उद्गम की कथा। ब्राह्मण कहने लगे कि एक समय शिव जी नृत्य कर रहे थे। हम लोग सब जानते हैं शिव जी भागवत में होकर नृत्य कर रहे थे, कैसा नृत्य हो, बड़ा सुंदर नृत्य था, सब लोग देख रहे थे, सारे लोगों से लोग वहां जमा हो गए और शिव जी नृत्य में मग्न है। भगवान श्री कृष्ण को पता चला गोलोक में कि शिव जी नृत्य कर रहे हैं, वो भी वहां पर आ गए और शिव के नृत्य को देख रहे। शिव जी बड़े भाव विभव थे, भगवान के नाम के आनंद में शिव को कुछ नहीं पता
चलता है। जय मन से शिव वसन न जाने,
शिव जी अपने वस्त्रों में भी उनको शुद्ध नहीं रहती। नाम के आनंद नहीं, जय नाम शिव वसन न जाने, भूल गए सब वसन कपड़ों को भूल। वहां पर नृत्य कर रहे हैं, बड़ा भाव विभोर नृत्य हो रहा है, सब देख रहे हैं, ब्रह्मा जी हैं, सारे देवता हैं, स्वयं कृष्ण हैं। और जब कृष्ण ने देखा तो आप जानते हैं कि कृष्ण जो भक्तों का प्रेम देखते हैं तो वो भी भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे जगन्नाथ जी केवल भक्तों के बारे में सुनकर कि भक्त कितना प्रेम उससे करते हैं, वो भाव विभोर हो गए, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ अंदर चले गए, पांव अंदर चले गए। ऐसे ही यहाँ पर शिव जी को देख रहे हैं, शिव जी नृत्य कर रहे हैं, और फिर उस समय भगवान का शरीर भाव विभोर है, भगवान भी भाव विभोर है, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, और कृष्ण का शरीर उधर मिल रहा। और ये देखकर जब शिव जी ने देखा
नारायण के आदेश से आया भगवान श्री नारायण से, दूसरा भगवान कृष्ण का पिघला हुआ